अर्जुन, ये सब सुनने के बाद, तीनों गुणों के बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या सुनने के बाद भगवान के मुख से, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तीन प्रश्न पूछे यहां, थ्री फॉर्म्स, थ्री क्वेश्चंस। अर्जुनोवाच, कैर्लिंगास्त्री गुणानेतान अदित भवति प्रभो किमाचार कदम चेताम ऋण गुणान अधिवर्तते। अनुवाद पढ़िए।
अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है।
हाँ, तो अर्जुन का इधर तीन प्रश्न है। एक प्रश्न है कि तीनों गुणों से जो परे हैं वो उन व्यक्ति का लक्षण क्या है, व्हाट आर हिज क्वालिटीज, सिम्टम्स या क्वालिटीज या लक्षण। दूसरा प्रश्न है किम आचरति, आचरण क्या रहता है, किम आचार, किम आचार, आचरण क्या है। तो ये लक्षण में आचरण में क्या है, अंतर क्या है, बिहेवियर में क्वालिटीज में अंतर क्या है। क्वालिटीज या गुण या लक्षण वो दूसरों को तुरंत दिखाई नहीं पड़ते, अंदर रहने वाला अंदरूनी गुण है, ये इंटरनल थिंग्स। और बिहेवियर जो है दूसरों को दिखाई पड़ता है, यानी कुछ ऐसी चीज दूसरों को दिखता है, स्पष्ट रूप में दिखता है, उनका आचरण ऐसा है, तो मतलब ये तीनों गुणों से परे है। नहीं, दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है क्या गुण क्या है, उनका लक्षण क्या है, दूसरा प्रश्न है उनका आचरण क्या है। तो ये दोनों प्रश्नों में अंतर जानना जरूरी है। अंतर क्या है, एक है इंटरनल अनपर्सीवेबल, जो दिखता नहीं है बाहर से, उसको गुण या लक्षण बोला जाता है, सिम्टम्स। दूसरा प्रश्न है बिहेवियर, किम आचरति, और तीसरा प्रश्न है कथम चेताम स्त्रीन गुणान अधिवर्तते, अतिवर्तते, कथम कैसे ये तीनों गुणों से परे हुआ जा सकता है, निर्गुण अवस्था गुणातीत हुआ जा सकता है, बहुत प्रचलित शब्द है गुणातीत। ये तीन प्रश्नों का जवाब भगवान आगे देते हैं। पहला प्रश्न का जवाब 22वां श्लोक में देते हैं, दूसरा प्रश्न का जवाब 23, 24, 25वां श्लोक में देते हैं, और तीसरा प्रश्न का जवाब 26वां श्लोक में देते हैं। तेईस, चौबीस, पच्चीस, हाँ, पहला प्रश्न है कि लक्षण क्या है, जो तीनों गुणों से अतीत हो चुका है उसका स्वभाव क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, गुण क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है उनका व्यवहार क्या है, एक्सटर्नल, जो दूसरों को दिखाई पड़े, ठीक है, जैसे मान कि जड़ बरत जैसा है, वो ऐसे बस बैठे ही है, यानी दूसरों को दिखाई नहीं पड़ रहा है तीनों गुणों से अतीत है। जब तक वो कुछ बोले कुछ करे तब दूसरों को दिखाई नहीं पड़ता, उसको आचरण बोला जाता है। आचरण बिहेवियर यू कैन सी। कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर हो सकता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है लोगों को, उसको लक्षण बोला जाता है, गुण बोला जाता है। जैसे आपके अंदर नम्रता नामक गुण है तो मुझे कैसे दिखाई पड़ेगा, जब आचरण करेंगे तो दिखाई पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो कोई आएंगे वरिष्ठ आएंगे तो आप उनको प्रणाम कर रहे हो या कुछ सुख आया दुख आया तो फिर भी भगवान को कृपा मान के रहते हो, कोई अपमान किया आपको दिख रहा है तो आप कुछ उसको बोल नहीं रहे हो, ये सब क्या है? बिहेवियर, इंस्पायर बिहेवियर। इसको क्या बोलेंगे कि इसमें कायलिंगा स्त्री गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो। लिंगा स्त्री मतलब ये सिम्टम्स लिखते हैं प्रभुपद, सिम्टम्स को क्या बोलेंगे? चिन्ह। तो इसको क्या बोलेंगे, सिम्टम्स को क्या बोलेंगे? तो लक्षण शब्द बराबर नहीं है इसके लिए, उपरोक्त नहीं है। दूसरा क्या है? बिहेवियर, बिहेवियर। जो भी है, एक जो है ना इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, ये अंदरूनी चीज है जो दूसरों को स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ता है, एक है जो स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है कि ऐसा। इसका दोनों के डिफरेंस है। हाँ ले वो सिम्टम ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये चल नहीं पाता है या कुछ कर नहीं पाता है, खा नहीं पा रहा है, ये बिहेवियर है। और स्थूल है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, ठीक है? नहीं हो के डिफरेंस। थर्ड तीसरा प्रश्न है कि मैं गुणों के अतीत नहीं हूं, मुझे अतीत होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अतीत होने के लिए? खत्म कैसे?
जो व्यक्ति त्रिगुण से परे है,
हाँ,
उस गुण को प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
और हाँ, तीनों गुणों के अतीत कैसे हुआ जा सकता है? प्रोसेस अभी दे प्रोसेस, ठीक है? 22nd श्लोक। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहनं नैव च पांडव न द्वेष्टि प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षसि। ये श्लोक का अनुवाद पढ़िएगा।
भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है ना, और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है।
बस प्रकाशंश्च प्रवृत्तिंश्च मोहनम्, तीन शब्द है इधर, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह। इससे क्या पता लगता है? प्रकाश किसका लक्षण है? सत्वगुण। दूसरा प्रवृत्तिम रजोगुण का, और मोह तमोगुण। ये तीनों गुणों का लक्षण या तीनों गुण से मान लो कोई व्यक्ति को दुख आ रहा है, ये तीनों की वजह से, प्रकाश से प्रवृत्ति से मोह से, तो वो आने पर भी वो ज्यादा विचलित नहीं होता है। या ये तीनों गुण से ना द्वेष करता है वो, ना बहुत अत्यंत आसक्त हो जाता प्रेम करता है। इन समरी ये है कि हे पांडवपुत्र, ही हु डज नॉट हेट इलिमिनेशन अटैचमेंट एंड इल्यूजन व्हेन दे आर प्रेजेंट एंड लॉन्ग फॉर देम व्हेन दे डिसअपियर। जब ये तीनों गुण का प्रभाव रहता है तो उससे वो द्वेष नहीं करता है, ना उससे वो अति, जब वो नहीं रहने पर उससे उसे बहुत आसक्त होकर दुखी नहीं होता है। चाहे वो गुण रहे ना रहे, कुछ भी हो, वो एकदम ये दोनों तीनों से विरक्त है। ये दोनों आसक्ति और विरक्ति, ये दोनों लगाव का ही दो स्वरूप है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, एवर्शन, अटैचमेंट एंड एवर्शन। एवर्शन समझे, एवर्शन मतलब एकदम द्वेष करना जो चीज से, तो द्वेष अगर कोई व्यक्ति से करता है वो भी एक प्रकार का आसक्ति है। कोई वस्तु से द्वेष करता है इसका मतलब यह नहीं कि वो उससे अनासक्त है, वो नेगेटिव आसक्ति है। कोई वस्तु से प्रेम करता है उसका विपरीत शब्द द्वेष है, कि प्रेम करो द्वेष करो, इसे पता लगता है कि वो अभी भी वस्तु से आसक्त है। सत्व रजस तम, ऐसे मत समझ, ये तीनों के लिए उपयुक्त है, प्रकाश, अटैचमेंट एंड डिल्यूजन, ये तीनों सत्व रजस तमा, ये तीनों के लक्षण है, ठीक है ना। सत्व गुण का प्रकाश, रजोगुण का आसक्ति, मोह तमोगुण का, ये तीनों गुण जब उपस्थित होने पे यानी उसका प्रभाव रहने पे, ना वो प्रभाव के प्रति उसका द्वेष है, जब ये तीनों गुणों से का प्रभाव नहीं रहने पर न उससे अत्यंत आसक्त हो जाता है। हाँ, या गुणों से उत्पन्न हुआ जो सुख, कभी कभी मान लो कि तमोगुण है, तमोगुण से नींद आता है व्यक्ति को, मान लो उसको नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, अरे नींद नहीं आ रहा है करके परेशान नहीं होता है वो। रजोगुण है, रजोगुण से कुछ मोह में सुख उसको मिलता है, जब वो नहीं मिलने पर तो उससे वो अरे क्यों नहीं हो रहा है मुझे, मुझे क्यों नहीं इस प्रकार का काम उत्पन्न नहीं उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। हाँ हो रहेगा, कोई ना कोई तो गुण का प्रभाव तो रहेगा ही। जैसे एक एक डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर से बात करते हैं कि आप तो प्रवचन में बोलते हो कि हमको काम को वश में करना चाहिए, बहुत एक इच्छाओं से दूर रहना, इंद्रिय तृप्ति का जो लालसा उसे दूर रहना चाहिए, आप जितना दूर रहेंगे वो सुखी रहेंगे। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा लोग हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेके, हमको काम इच्छा नहीं हो रहा, आप कुछ करो डॉक्टर। रजोगुण का प्रभाव इतना नहीं हो पा रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणान्वर्तन्ति एवं यो वाप्तिष्ठति नेते समदुःख सुखे सुख स्वस्थ स्वस्थ समलोकशास्त्र कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस तुल्य मित्रादि प्रकाशो स्वार्थभ्य परित्यागी गुणेतस उच्यते। अब ये तीन श्लोकों में ये उनका बिहेवियर का क्या आचरण है उसका वर्णन करते हैं। थ्री वर्सेस पढ़िए उसका अनुवाद।
जो भौतिक गुणों की इन समस्त स्थितियों से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत करते हैं।
इधर ये दोनों एक ही जैसे लग सकता है, लेकिन बार बार इसका अंतर इस प्रकार बोला गया। देखिए, द वाइल्ड आंसर टू बोथ द क्वेश्चन सीम्स सिमिलर, देर इज अ सटल डिफरेंस, सूक्ष्म अंतर है। द सिम्टम्स टेक्स्ट 22 आर परसीवेबल ओनली बाय पर्सन हिमसेल्फ, वेयर एज अ बिहेवियर इज परसीवेबल बाय अदर्स। ये जो उनका चिन्ह है वो केवल वो व्यक्ति स्वयं जान सकता है, लेकिन बिहेवियर जो है यानी आचरण दूसरे लोग को भी दिखाई पड़ता है। ये देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, कौन सा गुण का नहीं, ये पहला प्रश्न था अर्जुन का और दूसरा प्रश्न। उन दोनों का जवाब भगवान जब देते हैं 22वां श्लोक में और अन्य 3 श्लोकों में, ये दोनों अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि एक ही जैसा है। आप देखो, एक ही जैसा लगता है कि नहीं, लेकिन सूक्ष्म अंतर है, सटल डिफरेंस। क्या है अंतर? यह है कि द सिम्टम्स दैट इज टेक्स्ट 22 में जो वर्णन है आर परसीवेबल ओनली बाय पर्सन हिमसेल्फ। मान लो कि मैं मुक्त हूं, तीनों गुणों से परे हूं, तो मैं कितना हद तक हूं, मैं हूं कि नहीं, वो खाली मुझे ही पता लगता है गुण। लेकिन अन्य लोगों को कैसे पता लगेगा? अन्य लोगों को व्यवहार से। वो व्यवहार का वर्णन 23, 24, 25। हाँ, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आके आप निंदा किया तो तुरंत ही उत्तेजित हो जाता है, वो दूसरों को दिखाई पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। तुल्य तुल्य बार बार आया है। अस्तित्व पूरा भगवद गीता में इतना इतनी बार इस बात को कहा गया है, समान सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो ततो युद्धाय युद्धस्वा एवं पापि मापससी सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते न प्रावृष्येत प्रेम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिरबुद्रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणि स्थितम। कन्ने को श्लोकों में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु भक्तिम लभते पराम। ये जो अवस्था है ब्रह्मभूत अवस्था का वर्णन पहला शिक्षा से, फर्स्ट टाइम जैसे भगवान शिक्षा देना शुरू किया 14वें श्लोक में दूसरे अध्याय का, मात्रा स्पर्शास्ति पौंतया शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा पायन नित्यास्थान तीक्ष भारत यम हीन विचंते पुरुषम सम दुख सुखम धीरम। ये शुरुआत से लेके एकदम पूरा अंत तक इसी बात को, अंत में भगवान 1855 में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्माना, ये बीच में भी हर जगह इसी बात को कहते हैं, बहुत बार बार आता है, यही लक्षण होता है। आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रगति किए, उन्नति किए, उसका सबसे पहला मापदंड यही है। अगर अभी भी मान सम्मान में ऊपर नीचे होना, सुख दुख में ऊपर नीचे हो जाना, विचलित हो जाना अगर है, इसका मतलब अभी गुणों से परे नहीं हुआ, भक्ति में प्रगति नहीं हुआ अभी तक। हाँ, परसीव बाय हिमसेल्फ, उसी को दिखता है ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये जो डायरेक्टली विश्वनाथ ठाकुर सब टीका से, मैं भी बहुत प्रयास किया लेकिन बहुत बार बार पढ़ने के द्वारा कुछ दिखाई पड़ता है। मुझे पहली बार पता कि दोनों एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा है, ऐसा ही था। लेकिन जब ये विश्वनाथ ठाकुर का टीका में वो ये स्पष्ट रूप में उल्लेखन करते हैं कि अर्जुन का पहला प्रश्न का जवाब 22वें श्लोक में है और 23, 24, 25 में दूसरा श्लोक का दूसरा प्रश्न का जवाब है। तो ये जो एक प्रकार का होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क मतलब आप शांति से पढ़िए, उसको विचार कीजिए तो अपने आप स्पष्ट रूप में प्रकट होगा। एक्सप्लेन करने में भी बहुत मुश्किल होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्सप्लेन, जस्ट पीसफुली व्हेन यू रीड ना तो पता लगता है, इतना डायरेक्शन दे गए आचार्य ने। एग्जाम्पल यही है कि मुझे मिठाई अच्छा लगता है, ठीक है, मैं सत्वगुण में हूं, मुझे मिठाई अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मिला नहीं, मुझे मिला नहीं, तो दिल में कुछ होता है। इसका मतलब क्या है, मैं अभी तीनों गुणों से परे नहीं हूं। दूसरों को मालूम नहीं है कि ये इसको मिठाई अच्छा लगता है, मिठाई मिला नहीं है, उसी वजह से दुखी है, अदर्स डोंट नो, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण, ये पहला श्लोक के लिए है। दूसरा है, कोई व्यक्ति आया आपके पास, आके आपका एकदम निंदा करने लगा, अब मैं देख रहा हूं आपको निंदा करते हुए, देख के आपका आंख लाल हुआ, आप भी बोलना शुरू किए, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला, पूरा दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ये क्या है, मुझे दिख रहा है, आई एम एबल टू सी, दैट इज अ डिफरेंस। एक स्थूल रूप में उदाहरण दिया जाए तो ये श्लोक का अनुवाद पढ़ते जाएंगे क्लियरली क्लियर रहेगा, एक इंडिकेशन तो आ गया ना आपको। एनीथिंग, वन थिंग इज परसीवेबल बाय हिमसेल्फ, एक जो है खुद को मालूम है, दूसरा क्या है वो दूसरों को
भी
पता लग जाता है, ठीक है, बस ये आंसर, दिस इज द ओनली डिफरेंस। आ जाएगा, जैसे मान लो कि गुस्सा है, हाँ, ये उनका बिहेवियर हुआ ना, हर अवस्था में एक ही प्रकार रहना उनका बिहेवियर हुआ, ये कोई दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन सिचुएशन दो अलग है, दो अलग सिचुएशन है, परिस्थिति है। जैसे कोई कोई किसी को मालूम नहीं, अकेले बैठे हो, जैसे रसगुल्ला को उदाहरण दिया कि वो आपको चाहिए था, नहीं मिला, किसी को मालूम ही नहीं है, आप शांति से बैठे हो, उसको जो खुद को अनुभव होता है उसका वर्णन है। हाँ, अगर बोलना शुरू कर देगा कि नहीं मुझे नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो व्यवहार में हो जाएगा, तो मुझे चाहिए था, नहीं मिला, तो ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर मैं बहुत बहुत प्रयास किया, यही उधर मीरा रोड में वो रू बागे तो वो रू में भी ऐसी आर्ग्यूमेंट चला, तो मैं भी उधर ही जवाब दे दिया कि ये ऐसा सूक्ष्म चीज है ना, ये मैं बार बार उसको बहुत दो तीन दिन कंटिन्यूअसली पढ़ा, तो तब कुछ लग रहा है करके दिख रहा है, क्योंकि जब विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं वी हैव टू एक्सेप्ट इट, आचार्य ने लिखा है करके, तो उस हिसाब से हमको पढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे कुछ दिखता है, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन करने जाएंगे तो चलता रहेगा, ये सटल डिफरेंस है, सूक्ष्म अंतर है, ठीक है। छब्बीस 27 बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल श्लोक है, 26 बोल के बंद हो जाना चाहिए भगवान को, लेकिन 27 ही 26 में भी उन्होंने क्या शब्द बोल दिया कि भक्ति केवल ब्रह्म को प्राप्त करता है भक्त, तो माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समदीयतां ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद करिए।
जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वो तुरंत ही पुत्र के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है।
ये श्लोक में क्या कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण, जो मेरा अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। व्यभिचारिणी मतलब क्या है, कि अपने पति को छोड़ के कहीं और जाते हैं, उनको व्यभिचारिणी कहा जाता है, वेश्या है। तो केवल पति का ही सेवा करना, उनके साथ में रहना, तो ये जो स्वभाव है पतिव्रता का है। तो जो श्री कृष्ण को ही एक पतिव्रता के रूप में कहीं इधर उधर जा गए बिना शुद्ध भक्ति में लगा रहता, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, शुद्ध भक्ति, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, उस प्रकार की भक्ति में लगा हुआ है, वो व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, सगुणान समतीत्यतान, वो गुणों के ऊपर लांग के चले जाता है, उनके ऊपर पैर रख के ऊपर चले जाता है। गुणातीत, गुणातीत होता है, गुणातीत होके क्या प्राप्त करता है वो, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये ब्रह्म अवस्था भी गुणातीत, गुणातीत अवस्था है। तो ऐसा क्यों है कि इधर भगवान गुणातीत अवस्था, ब्रह्म अवस्था कहा गया है, भक्ति के बाद भक्ति करके ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो भगवान को प्राप्त करना चाहिए, हमने तो ऐसा सुना है। तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए भगवान 27वां श्लोक बोलते हैं। अगर वो 20वां श्लोक में बोल देते सारे भक्तों के और भक्ति सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत को पालन करने वाले, तो बहुत तकलीफ हो जाता है। तो भक्ति के सिद्धांत को पालन करने वालों को बहुत तकलीफ हो जाता है अगर भगवान यही बताते। तो भक्ति पालन करने के बाद ब्रह्म प्राप्त करोगे, भक्ति करने के बाद ब्रह्म प्राप्त करोगे, तो इसके लिए भगवान 27वां श्लोक बोलते हैं। क्या, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, अमृतस्य च अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखम एकांतकस्य च, ये श्लोक उच्चारण करते हैं। तो ये 26वां श्लोक का जरा तात्पर्य पढ़िए, थोड़ा क्लैरिफिकेशन आएगा। 26वां
श्लोक अर्जुन के
ये स्पष्ट है कि अर्जुन का तीसरा क्वेश्चन था, कौन सा तीसरा क्वेश्चन था उसका, तीनों गुणों से कैसे लगते हैं, उसका जवाब देते हुए ये श्लोक उच्चारण करते हैं। ये श्लोक के अनुसार ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये बताने के लिए कि ये जो ब्रह्म है कोई और नहीं है, मैं ही हूं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक वो आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन पहले तात्पर्य प्रेस रूपा जी का। हाँ ठाकुर,
ये श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये भौतिक जगत प्रकृति के गुणों से इतने चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, जैसा राम तथा नारायण उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण की किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यदि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वो उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण के शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रगति के गुणों के प्रभाव को लाना जा सकता है। कृष्ण भावना में से कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खांस के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। किंतु व्यस्तित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्तियोग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्तियोग का अर्थ है कि भगवान हैं, भक्त हैं तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का दायित्व वर्तमान रहता है, विस्तृत वर्तमान रहता है। अंतः भक्तियों का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता आवश्यक है। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म सन ब्रह्म प्रेति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म में एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यस्त आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं।
तो ये लास्ट पॉइंट है, बाय अटेनिंग द ब्रह्मन वन डज नॉट लूज हिज एटर्नल ब्रह्मन आइडेंटिटी एज एन इंडिविजुअल सोल। ये इस श्लोक से उद्धृत किया जाता है। जैसे एक ज्ञानी है, वो ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति तभी होगा जब वो भक्ति करता है। योग कर रहा है वो योग की सिद्धि तभी प्राप्त होगा उसको जब वो भक्ति करता है। अन्य जितने भी मार्ग है वो भक्ति के ऊपर निर्भर है, लेकिन भक्ति किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। ये चीज को इस श्लोक में इंगित किया जा रहा है, इट इज बीन डिस्कस्ड, कि यह ब्रह्म की भी प्राप्ति करना है आपको भक्ति करना ही पड़ेगा। शुद्ध भक्ति करने के बाद आप किसको प्राप्त करोगे? ब्रह्म को प्राप्त करोगे। लेकिन ये ब्रह्म है क्या? व्हाट इज दिस ब्रह्मन? ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये ब्रह्म क्या है उसका वर्णन 27वां श्लोक में करते हैं। अगर 27वां श्लोक उच्चारण नहीं करते भगवान तो क्या सिद्ध होता? भक्ति करने के बाद, शुद्ध भक्ति करने के बाद क्या प्राप्त करेंगे आप? ब्रह्म प्राप्त करेंगे, भगवान प्राप्त नहीं होंगे या परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं होगा, ऐसा कोई कह सकता है? तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए नहीं, भक्त मुझे ही प्राप्त करता है, तो इसलिए ये 27वां श्लोक को उच्चारण किया जा रहा है। हाँ, इसी बात है, ये बात बताने के लिए कि आप ब्रह्म को भी प्राप्त करना है, वो ज्ञानी के द्वारा संभव नहीं है, और ज्ञानी को भी थोड़ा सा भक्ति करना ही पड़ेगा। योगी को भी जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक परमात्मा का रियलाइजेशन प्राप्त नहीं होगा उसको। अन्य जितने ये मार्ग है वो किसके ऊपर आधारित है? भक्ति के ऊपर आधारित है। इसको इनडायरेक्टली इंडिकेट करते हुए इस श्लोक को उच्चारण किया जा रहा है। हमेशा ये दो श्लोकों को साथ साथ में बोलना है। अगर आप 26 को बोल के छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम होगा। भक्ति के बिना ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों को किसी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान योगी को भी भक्ति करना ही होगा अपना ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। हाँ, ये इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। कहते हैं कर्मीज एंड ज्ञानीज मस्ट इवेंचुअली गिव अप देयर प्रोसेस एज दी अटेन हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, बट वन नीड नॉट गिव अप भक्ति। इवन कर्मीज एंड ज्ञानीज वुड नॉट डिजायर द शेल्टर ऑफ कृष्णा एट द अल्टीमेट गोल मस्ट टेक टू डिवोशनल सर्विस इन ऑर्डर टू अचीव देयर फ्रूट्स ऑफ देयर प्रोसेस। ये श्लोक का ये इनडायरेक्ट हिंट है। दो चीजें, एक कर्मी ज्ञानी को अपना कर्म और ज्ञान को त्याग करके ही तभी वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे, तभी वो भगवान को प्राप्त करेंगे। दूसरा, इवन कर्मी प्राणी इतना हट पकड़ के नहीं मुझे ब्रह्म ही चाहिए, परमात्मा की साक्षात्कार चाहिए, फिर भी वो साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए भी उनको भक्ति करना पड़ेगा। यानी भक्ति कोई और अन्य मार्ग के ऊपर आधारित नहीं, बल्कि अन्य मार्ग जो है भक्ति के ऊपर आधारित है। ये सिद्धांत को इस श्लोक में इनडायरेक्टली प्रस्तुत किया गया है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ श्री विश्राम टीका। ये लाइन नहीं है, ये इंटेंशनली अवॉइडेड, लेकिन ये 27th वर्स में थोड़ा सा इसका इंडिकेशन है। जब 27वां श्लोक का तात्पर्य पढ़ोगे प्रभुपाद इसको इंडिकेट करते हैं इस बात को। ठीक है, लेट अस गो। तो ये साथ साथ में पढ़ना हो, दोनों साथ में पढ़ने का थोड़ा क्लियर आइडिया आएगा। 27 ब्रह्मणो ये प्रतिष्ठाहम नृतस्य शाश्वतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य धुम्मेकान्तिकस्य च। अनुवाद पढ़िए इसका।
और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अंतर अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है।
तो ये श्लोक है 27th। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्। भगवान को क्या बोला गया है? परब्रह्म बोला गया है। सांद्रानंदावबोधात्मकम्, आनंद घन है। और ब्रह्म को एकदम कॉन्सेंट्रेट किया जाए, जैसे सूर्य है, सूर्य में सूर्य किरण में क्या अंतर है? सूर्य से सूर्य किरण उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, सूर्य किरणों को दबा दबा के रखा जाए तो क्या होता है? वो सूर्य हुआ ना। ये दोनों ठीक है, एक है जो सूर्य किरण का स्रोत सूर्य है, एक दूसरा क्या है? सूर्य किरणों का समूह या मूर्तिमान स्वरूप, इसको सूर्य बोला जाता है। तो वैसे ही ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान से क्या उत्पन्न हो रहा है? ब्रह्म तेज उत्पन्न हो रहा है। और भगवान कौन है? ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप। यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? ब्रह्म भूयाय कल्पते, अगर इस शब्द को इस्तेमाल भी किया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन इट। क्यों? भगवान जो है उनसे ब्रह्म उत्पत्ति हो रहा है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और दूसरा, भगवान का जो पूरा शरीर है वो किससे बना हुआ है? सचिदानंद ब्रह्म से ही बना है। तो इसलिए ब्रह्म भूयाय कल्पते ये शब्द इस्तेमाल करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को बताया जा रहा है। ये मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में। श्रीधर स्वामी कमेंट्स, कृष्णा इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ब्रह्मन, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ब्रह्मन। कृष्ण कौन है? ब्रह्म के समूह है या मूर्तिमान स्वरूप बोला जा सकता है। एज अ सन इज इंटेंसिफाइड फॉर्म ऑफ लाइट, जिस प्रकार सूर्य सूर्य किरणों का समूह है। ऑल दो कृष्णा एंड ब्रह्मन आर नॉन डिफरेंट, कृष्णा इज द सपोर्ट ऑफ ब्रह्मन, द कंप्लीटनेस ऑफ ब्रह्मन इज कृष्णा। ये श्री श्रीधर स्वामी का कमेंट्री से एक्सट्रैक्ट है। तो ये दो कारणों की वजह से ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये ब्रह्म भूयाय कल्पते इस शब्द के ऊपर व्याख्या करते हुए, शुद्ध भक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होता है ये बोलने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि कृष्ण कौन है? ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है, कहां से उत्पन्न हुआ है? कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। तो ये दोनों को अलग है करके सोच के बैठना तो हमारी मूर्खता है। वदंती तत्व विदस्तत्वम यज्ञान द्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। अंततः ये तीनों क्या है? तीनों परम सत्य का ही स्वरूप है। तो इस बात को श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं। नेक्स्ट, श्री विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर उनका क्या व्याख्या सुनते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी, इफ वन वर्शिप्स मी विद द डिजायर ऑफ इम्पर्सनल मर्जिंग, ही विल मर्ज इन टू ब्रह्मन एंड अटेन द नेचर ऑफ ब्रह्मन। ये देखिए विश्वनाथ ठाकुर का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई मेरा भक्ति करता है ये इच्छा के साथ मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं तो क्या होगा उसको? वो ब्रह्म में लीन होगा। आगे हाँ, अर्जुन टू हैज कंफर्म कृष्ण एज पर ब्रह्मन द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इन 10:13। ब्रह्मन इज द बेसिक ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म अपॉन विच प्योर डिवोशनल सर्विस टेक्स प्लेस। शुद्ध भक्ति जो है ये ब्रह्म की स्तर में ही होता है। इन 13:13 कृष्ण सेड ब्रह्मन द स्पिरिट बिगिनिंग लेस इन सबॉर्डिनेट टू मी लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट दिस मटेरियल वर्ल्ड। दिस ब्रह्मन इज द गोल ऑफ इम्पर्सनेंस, इज सबॉर्डिनेट टू कृष्ण सुप्रीम पर्सनल, इज रेस्ट अपॉन हिज एग्जिस्टेंस। कौन सा श्लोक? हाँ, 27वां श्लोक अगर सेपरेटली कोट किया जाए, इसके लिए कोट करते हैं कि ये बताने के लिए कृष्ण का शरीर से ही उत्पन्न हुआ तेज ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है उसका प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? कृष्ण। हाँ, तो ये ब्रह्म भूयाय शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है इसका व्याख्या श्रील श्रीधर स्वामी एक प्रकार करते हैं, श्रील विश्वनाथ ठाकुर एक प्रकार करते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी इस प्रकार करते हैं कि ब्रह्म भूयाय कल्पते करके इस्तेमाल करने में इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है, तो ये सूचित करता है, कृष्ण को ही सूचित करता है और किसी को सूचित नहीं कर रहा है, ये बात उल्लेखन करते हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मी, ई वन वर्शिप्स मी विथ फेथ। उनका कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म में भी जाना चाहता है उसको मेरा भक्ति करेगा तभी मिलेगा उसको ब्रह्म साक्षात्कार, वो वैसे नहीं मिलने वाला है। जब पिछले बार श्लोक में लास्ट श्लोक के में इंडिकेट किए थे क्यों भगवान ने चर्चा किया, वो विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट हुआ। हाँ, अगर कोई ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है भक्ति किए बिना नहीं प्राप्त कर सकता,
जबकि वो मतलब उसके अंदर ही होगा कि उसको ये जानकारी नहीं है भगवान प्राप्त कर, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता तो भी भक्ति करनी पड़ेगी और उसी भक्ति से वो भगवान को ही पा सकता है।
हाँ, उसी भक्ति से भगवान को ही प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर उसको इच्छा है कि ब्रह्म में जाने का तो उसके लिए भी उसको मुझे भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति किए बिना ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन मतलब दिव्य साक्षात्कार, ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य, तीनों गुणों से परे, रियलाइजेशन मतलब साक्षात्कार। ये साक्षात्कार होना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दिव्य साक्षात्कार का शुरुआत ब्रह्म साक्षात्कार से होता है कि भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, इस प्रकार की जो साक्षात्कार है ब्रह्म साक्षात्कार से होता है। जैसे उदाहरण दिया, दूर से आप कोई ट्रेन को देखते हो आपको लगता है कुछ है, थोड़ा और नजदीक आता है जब ट्रेन लगता है, अरे तो कुछ लंबा है, इतना है, ऐसा ऐसा है, कुछ दिखता है, लेकिन जब एकदम सामने आ जाता है ट्रेन तो आपको कैसे लगता है? इसके अंदर बहुत सारे डिब्बे हैं, उसके अंदर लोग बैठते हैं, चेयर है, बर्थ है, वो है, नंबर लगे हुए, सब दिखाई पड़ता है। तो शुरुआत में जब आप कोई ट्रेन को देखोगे तो कैसा लगेगा? कुछ है। जैसे लोग उनके पास जाके बोलेंगे आप भगवत गीता पढ़िए, हाँ हाँ मानते कुछ तो है, इतना बोलते लोग, कुछ तो है, कभी और थोड़ा ऊपर वाला नीचे वाला कुछ तो बोलते हैं, कुछ है। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार है, समथिंग इज देयर, दैट इज बिगिनिंग, शुरुआत। फिर अंततः कृष्ण का ये ब्रह्म साक्षात्कार में भगवत का, भगवान का स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है, और होता भी तो उनका उसके प्रति आकर्षण नहीं रहता, इसको ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, इसका ब्रह्म साक्षात्कार। परमात्मा सर, परमात्मा मिडिल में क्या है? परमात्मा, परमात्मा का कम से कम इतना तो है, उनका कुछ आकार है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको क्या पसंद है, वो क्या क्या उनके साथ में कौन कौन निवास करते हैं, वो सब चीजें कुछ नहीं मालूम रहता है आपको, बस ऐसा लगता है कुछ ऐसा लंबा सा कुछ है, ट्रेन नजदीक आते आते दिखाई पड़ता है कुछ लंबा तो चल रहा है, उसके अंदर इतने डब्बे हैं, वो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ है लंबा जैसा है कुछ।
हाँ,
बारह अध्याय के तीन चार में, आप अगर बारह चार में भी है, वेरी गुड, इसका जो भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार होगा उसमें भी है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक में प्रभुपाद जी विस्तृत रूप में करते हैं, ब्रह्मन परमात्मा दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है ना, पहली बार श्री भगवान वाचा, हाँ वाला श्लोक नहीं, माता जी का प्रश्न था ना, ब्रह्म साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार, उदाहरण के द्वारा सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, सूर्य किरण, सूर्य का ग्रह, सूर्य देवता, चार तीन चार में ये जो ब्रह्म साक्षात्कार को भी प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा व्यक्ति को? भक्ति करने के बाद ही उसको ब्रह्म साक्षात्कार होगा, तीन और चार सपोर्ट। ब्रह्म दिव्य है ना, ये प्रकाश है जैसे सूर्य प्रकाश है, लेकिन सूर्य का पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ, कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं हुआ, ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश कैसे है, उसका कोई रूप है, रंग है, बस कुछ है, लाइट है, बस पूर्ण तरीके से नहीं हुआ। इसलिए ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म साक्षात्कार अपूर्ण साक्षात्कार, प्रभुपाद जी लिखते हैं द इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट होल इज कॉल्ड ब्रह्मन रियलाइजेशन, इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट होल, इनकम्प्लीट
रिलेशन
ऑफ द कंप्लीट होल, ऐसा उनके भाषा में क्या करो, ओके कंप्लीट निकाल, होल निकाल लीजिए, बस ये लिखिए इतना कि इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट, और आगे लिखते हैं ऑल द इनकम्प्लीटनेस इज एक्सपीरियंस्ड बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट, सभी अपूर्णताओं का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण का अपूर्ण अनुभव की वजह से, वो पूर्णवदम पूर्णवदम पूर्ण पूर्णवदच्छते हो वो वाला इसमें है, पूरा एक पूरा ये है, पूरा पैराग्राफ में बहुत बार पूर्ण 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 आता है, ठीक है, इसका प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे, इसका 26 27 सॉरी 27
ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृत परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृत में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वो इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वो ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वो चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे
ये श्लोक कौन सा मालूम है? वेरी फेमस श्लोक भागवतम से। ब्रह्मभूत अवस्था में जाने के बाद भी नीचे गिरने का उनका हमेशा डर रहता है। येन्येन अरविंदाक्षि मुक्तमान स्वीय सद्भावात् अविशुद्ध बुद्ध्या आरुह्य कृच्छेन परम पदम पतन्ति अधो अनाद्रदुष्मदांग्रयः।
वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वैसा रसम एवायम लब्धानंदि भवत्। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद 2:7-1 परमेश्वर छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन छह ऐश्वर्यों को का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यप स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन जगत के संसर्ग से वो अपने को तीनों गुणों तथा तमो गुणों में बांध देता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा रह होती है। पूर्ण के संभावना में उसमें भक्ति में प्रवृत्त होने पर वो तुरंत दिन पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वो दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगत करके भक्ति के नौ विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगत से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य को प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत हो सकेगा। इस दिन की संस्कृति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान अर्पित भोजन का उचित खाए, भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे।
इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव अनुधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है।
तो 14 चैप्टर 15 बहुत सारे लोगों को ये 15वां अध्याय पूरा याद रहता है, 12 और 15, 12वां और हाँ 15वां भी याद रहता है लोगों को, गुजरात में बहुत सारे लोगों को याद रहता है। हाँ स्वाध्याय स्वाध्याय परिवार रेनो में से कितने लोगों को याद है पूरा? सारे सारे याद है 15 के, ठीक लिखना नहीं चाहिए, याद है ना बस, वेरी गुड। वैसे बहुत सारे लोगों को याद रहता है, बच्चे बच्चों को सिखा के रखते 15वां अध्याय, 12वां नहीं, 12वां नहीं आता है थोड़ा, 12 और 15 बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम योग का शुरुआत एक श्लोक से होता है, श्री भगवान उवाच उद्वामूल मदशाकम अश्वत्तम प्राहुरव्ययम चंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तीनों गुणों से परे हो जाना, और परे होने के बाद एक प्रश्न उत्पन्न होता है, ये तीनों गुण के द्वारा बना हुआ ये जगत है क्या ये? व्हाट इज दिस? परे होने के बाद हम जाएंगे वो जगत का थोड़ा परिचय दो। वैसे 8वें अध्याय में भगवान आध्यात्मिक जगत का परिचय देते हैं, लेकिन फिर भी क्लियरली अर्जुन ये जानना चाहता है कि आध्यात्मिक जगत है क्या और ये भौतिक जगत है क्या, व्हाट इज दिस मटीरियल वर्ल्ड। उन्होंने पूछा कि कायर्लिंगाय स्त्रीन गुणानेतान अधितत् प्रभो किमाचर कथम चेतान त्रिन गुणान अतिवर्तते। तो ये जो अर्जुन का तीन प्रश्न थे ना 14वां श्लोक 14वां अध्याय में, वो तीन प्रश्नों के ऊपर आधारित होते हुए और कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए मन अर्जुन के मन में, जो उन्होंने पूछा नहीं बल्कि ये समझते हुए कि अर्जुन को और अच्छी तरह से क्लारीफाई करो ये भौतिक जगत क्या है, और भौतिक जगत में तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हुए जीव अलग अलग विषयों को कैसे भोगता है, और उससे परे होने के बाद वो कहां जाता है, और जाने की विधि के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा और वर्णन करो। क्वेश्चन नहीं किया। माम च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो भक्ति योगेन सेवते, ये भक्ति क्या है, अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, और आपने बताया कि मेरा भक्ति करने से ब्रह्मभूतावस्था को प्राप्त करता है, ब्रह्मावस्था को प्राप्त करता है, और निश्चित रूप में इस बात को बताने के लिए कि वो ब्रह्म कोई और नहीं है, मैं ही हूं, और मेरा वास्तविक पहचान ब्रह्म नहीं है बल्कि पुरुषोत्तम है, मैं एक पुरुष हूं जिनका एक सुंदर स्वरूप है, अनेकों बातों को सिद्धांत को स्पष्टीकरण करने के लिए, वैष्णव सिद्धांत को और स्पष्टीकरण करने के लिए ये अध्याय का भगवान बताते हैं। अध्याय ये देखिए, जो भी चीज पहले बताया गया है उन्हीं चीजों को स्पष्ट रूप में 15वां अध्याय बताया जा रहा है। एक जगह एक लेक्चर में ऐसे बैठे थे, तो ये मध्व संप्रदाय के सन्यासी ऐसे लेक्चर दे रहे थे, कनाडा में दे रहे थे, उनका ये कहना था कि शंकराचार्य को अन्य मायावादियों को अन्य जो अध्याय है बाकी अध्याय है उसके ऊपर संस्कृत का अपना वाक चातुर्य इस्तेमाल करके मायावाद सिद्धांत स्थापना करने के लिए उनको इतना मुश्किल नहीं पड़ा अन्य अध्यायों में, लेकिन 15वां अध्याय उनके लिए अति मुश्किल हो गया, वेरी डिफिकल्ट। तो 15वां अध्याय जो है क्यों? क्योंकि भगवान बिना कुछ और मौका दिए बिना अन्य सिद्धांतों को स्थापना करने के लिए केवल शुद्ध वैष्णव सिद्धांत को स्पष्ट रूप में कहते हैं, वेरी एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्स। एक होता है इम्प्लिसिट एक्सप्लेनेशन, यानी थोड़ा मौका दिया जाता है, ठीक है ब्रह्म भूया है कल्पते, एक मौका है ज्ञातुं दुष्टुं च तत्वतेन प्रविष्टुं, एक मौका है मायावादियों के लिए। लेकिन 15वां अध्याय क्या है, इसके अंदर उन्होंने मौका दिया नहीं है, ही हैज नॉट गिवन एनी। आप कौन हो माम च यो अभिविचार है ना, स्पष्ट रूप में बताओ कि आपका स्वरूप क्या है, आपका भक्ति करने से ब्रह्म प्राप्त होगा कहेंगे, ये भक्ति क्या है बताओ, और आप कौन है ये स्पष्ट रूप में बता दो, किसको प्राप्त करेंगे, और अंततः कि मैं तीनों गुणों से परे होने के बाद कहां जाऊंगा उसका आप थोड़ा सा परिचय दीजिए, और तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हुए ये जो भौतिक जगत है वो किस प्रकार लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, वो भी बताइए संक्षिप्त में स्पष्ट रूप में। ऊर्ध्वमूलं मदशाकं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। इसका अनुवाद क्या है पढ़िए।
भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को गुरु का ज्ञाता
है। वेरी गुड। ऊर्ध्वमूलम, एक अश्वत्थ वृक्ष का कल्पना कीजिए जिसका मूल जड़ कहां है, ऊर्ध्व ऊपर है, ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम, अधा मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या है शाखाएं, ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम, एक अश्वत्थ है, ये अश्वत्थ वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, लेकिन ये अश्वत्थ वृक्ष का स्वभाव क्या है, अव्ययम, कभी उसका नाश नहीं होता है, और छंदांसी यस्य पर्णानि, उनके पत्ते हैं वो क्या है, वो वैदिक मंत्र है, यस्तम वेद, जो व्यक्ति इस वृक्ष को जानता है वो व्यक्ति वेदवित, वेदों को जानता है, जो व्यक्ति इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। तो प्रभुपाद जी उसका बहुत विस्तृत व्याख्या देते हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्पोट, प्रभुपाद एक बहुत सारे तात्पर्य, उनमें से कुछ कुछ तात्पर्य गिने चुने तात्पर्य है जिसके अंदर थोड़ा सा बहुत ध्यान देके, ऐसे तो अनेकों तात्पर्य ध्यान देके पढ़ना होगा, लेकिन इसको भी बहुत ज्यादा ध्यान देके पढ़ना होता है। हाँ उसी बताएंगे ना, तात्पर्य में है ना, लेट अस गो प्रभुपाद तात्पर्य, बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करते जाएंगे। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति योग, वन में क्वेश्चन व्हाट अबाउट वेदस, आई भक्ति योग का वर्णन हुआ उसके बाद कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि वेद क्या है, इट इज एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर द पर्पज ऑफ वेद स्टडी इज टू अंडरस्टैंड कृष्ण, सारे वेदों का अध्ययन करने के बाद किन को जाना जाता है, कृष्ण को जानना, therefore one who is in Krishna consciousness, who is engaged in devotion, already knows the Vedas. दूसरे शब्दों में जो भक्ति कर रहा है और कृष्ण का भजन कर रहा है और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, उनको सारे वेद पहले से मालूम है, यानी उनको और वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पढ़ेगा तो भी यही समझते हुए कृष्ण का गुणगान है करके पढ़ता है। द एंटैंगलमेंट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड हियर टू ए बैनियन ट्री। ये जो वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष है ये एक उपमा मात्र है, इट इज एन एनॉलॉजी। अस्तित्व में यह वृक्ष है क्या? भौतिक जगत, मटीरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं द एंटैंगलमेंट टू दिस मटीरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू ए बैनियन ट्री। ये भौतिक जगत के साथ हमारा जो लगाव है उसको किससे तुलना किया गया है? अश्वत्थ वृक्ष के साथ तुलना किया गया है जो जिसका ऊर्ध्वमूलम अदर शाख। फॉर वन हु इज एंगेज इन फ्रूटिव एक्टिविटीज देर इज नो एंड टू दिस बैनियन ट्री। यानी जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है और उसके लिए ये वृक्ष का अंत नहीं है। यानी क्या है, वो क्या कर रहा है? ये वृक्ष में अनेकों शाखाएं हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से एकदम इधर इधर घूम रहा है बस। यानी ये वृक्ष से मैं निकल जाऊं, उतर के चले जाऊं, उसके मन में नहीं आता। एक शाखा पर बैठा है वो सोचता है नहीं ये ठीक है, इधर भोग रहा हूं, इधर भोग नहीं इतना हो गया ना, तो दूसरे उधर जाके कुछ करो, उधर जाके कुछ करो, यही वृक्ष पे घूमता रहेगा। लेकिन वो वृक्ष से उतरने का उनका कोई बुद्धि नहीं मिलता। ही वॉन्डर्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर एंड अनदर टू अनदर, एक शाखा से दूसरे शाखा। वैसे कितने शाखाएं हैं? 84 लाख। The tree of this material world has no end, and for one who is attached to this tree, there is no possibility for liberation. जो व्यक्ति ये वृक्ष के साथ उनका लगाव है, आसक्ति है, उसको मुक्ति कभी प्राप्त नहीं होता है। The Vedic hymns meant for elevating oneself are called the leaves of this tree. तो जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वैदिक हिम्स मेंट फॉर एलिमेटिंग और कॉल्ड लीव्स ऑफ द ट्री, दिस ट्री। ये जो वेद है, ये वैदिक हिम्स यानी चंदांश्यस्य पर्णानि, जिनका पत्ते, ये वृक्ष की पत्ते वो चंद है, वो वेद है। वो वेदों को पढ़ के अपने आप को वो ऊपर उद्धार कर सकता है। दिस ट्री roots grow upwards because they begin from where Brahma is located. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो वृक्ष है उसके मूल ऊपर क्यों है? क्योंकि ब्रह्मलोक कहां है? ऊपर है। और ये पूरा वृक्ष का मूल कौन है? यानी मूल तो कृष्ण है, लेकिन स्वर्ग के अंतर्गत ये सृष्टि का ब्रह्मा जी ऊपर है, तो इसके मूल उधर है। दिस ट्रीज रूट्स ग्रो अपवर्ड बिकॉज दे बिगिन फ्रॉम वेयर ब्रह्मा इज लोकेटेड, द टॉप मोस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। इफ वन कैन अंडरस्टैंड दिस इनडिस्ट्रक्टिबल ट्री ऑफ इल्यूजन देन वन कैन गेट आउट ऑफ इट। जो व्यक्ति इस वृक्ष का स्वभाव क्या है, इसका लक्षणों को जानता है, वो ये वृक्ष से उतर सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेशन शुड बी अंडरस्टूड, एक्सप्लिकेशन शुड बी अंडरस्टूड। इन द प्रीवियस चैप्टर्स इट हैज बीन एक्सप्लेन दैट देयर आर मेनी प्रोसेसेस बाय विच टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल एंटैंगलमेंट, एंड अप टू द 13th चैप्टर वी हैव seen that devotional service to the Supreme Lord is the best way. अनेकों अध्यायों में अनेकों प्रकार की योग पद्धतियों का वर्णन है, लेकिन हमने सुना 13वां अध्याय में और अन्य अभी भी कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। 13th chapter is the topmost, भक्ति योग is the topmost. Now the basic principle of devotional service is detachment from material activities and attachment to transcendental activities. प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तियों का मूल यही है भौतिक चीजों से अनासक्त होना और आध्यात्मिक चीजों से आसक्त होना, भौतिक वस्तुओं से अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, ये भक्तियों का मूल है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अटैचमेंट टू द मेटीरियल वर्ल्ड इज डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो कैसे हमें भौतिक जगत से अनासक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, इस अध्याय में उसका वर्णन है। द रूट ऑफ दिस मेटीरियल एग्जिस्टेंस ग्रोज अपवर्ड्स। दिस मीन्स दैट इट बिगिन्स फ्रॉम द टोटल मेटीरियल सब्सटेंस, द टॉप मोस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स। फ्रॉम देयर द होल यूनिवर्स इज एक्सपैंडेड विद सो मेनी ब्रांचेस रिप्रेजेंटिंग द वेरियस प्लैनेटरी सिस्टम्स। द फ्रूट्स रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ द लिविंग एंटिटीज एक्टिविटीज, नेमली रिलीजन, economic development, sense gratification, liberation. तो ये वृक्ष का मूल ऊपर की ओर से है और जैसे अनेकों शाखाएं उत्पन्न हो रही है, अनेकों शाखाएं अनेकों लोगों को सूचित किया जा सकता है और ये अनेकों शाखाओं में अंत में जो फल है वो कर्मों का फल है। ये कर्मों का फल जो है ये चार पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्मार्थ, काम, मोक्ष। नाउ देयर इज नो रेडी एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड ऑफ द ट्री सिचुएटेड विथ इट्स ब्रांच डाउन एंड रूट ऑफ फ्रूट्स। आपको ऐसा वृक्ष दिखाई पड़ा कहीं इधर? दिखाई नहीं पड़ता, नहीं ऐसा है। बट देयर इज सच ए थिंग, द ट्री कैन बी फाउंड बिसाइड्स अ रिजर्वायर ऑफ वाटर। आप कहीं जाएंगे लेक उसको एक तालाब के पास जाएंगे, दिखाई पड़ता है। When we see that the tree on the bank is reflected in water with its branches down and root upwards, आप एक तालाब के पास जाएंगे, एक बड़ा सा वृक्ष होगा तालाब के किनारे में और उसके जो परछाई है, रिफ्लेक्शन है, वो उनके शाखाएं ऊपर होंगी और नीचे this reflection in the spiritual world is situated on the design just as the tree's reflection is situated in the water. ye pani ke wajah se hi, jal ke wajah se hi ye asli vruksh hai wo uska ek parchhai par pratibimb hua. ye jo asli vruksh ka tulna aadhyatmik jagat mein kiya ja sakta hai aur ye nakli jo vruksh hai yani ulta jo khada vruksh hai uska tulna kise kiya ja sakta hai? bhautik jagat ke sath. और ये परछाई किसके लिए आई? क्योंकि उधर तालाब पानी है, जल है। और ये जल क्या है? इच्छा, भौतिक इच्छा, यानी भगवान से विलग होकर भोगने की इच्छा ही एक जल है जिसकी वजह से पूरा भौतिक जगत में रहना पड़ा। डिजायर इज द कॉज ऑफ थिंग्स बीइंग सिचुएटेड इन दिस रिफ्लेक्टेड मटीरियल लाइट। One who wants to get out of this material existence must know this tree thoroughly through analytical study. विश्लेषात्मक अभ्यास के द्वारा, अध्ययन के द्वारा एक व्यक्ति को ये जो वृक्ष के बारे में एकदम स्पष्ट रूप में मालूम हो जाना चाहिए। Then he can cut off his relations with it. आपको याद है एक उदाहरण, वो मैरिज पार्टी जो जाना चाहता, एक कहीं शादी होने वाला था तो उधर नाव ऊपर नहीं, हाँ तो अगला दिन उठ के देखे तो देखे उधर ही है। क्यों है उधर ही? क्योंकि वो लंगर नहीं उठाया था। तो वैसे ही ये भौतिक जगत के साथ आसक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति दोनों साथ साथ में बढ़ नहीं सकता, एक चीज इम्पॉसिबल। भौतिक जगत के साथ अनासक्ति भी उत्पन्न करना चाहिए, रखना चाहिए और साथ साथ में भगवान के प्रति आसक्त होने का क्रिया भी करना चाहिए। जैसे भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि परम दृष्ट्वा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते निराहारस्य देहिनः। ये भले ही भौतिक चीजें होती आकर्षण आ सकती है, उसको काटो और साथ साथ में परम दृष्टा भगवान की ओर देखो, भक्ति करते रहो, दोनों करना चाहिए। वन शुड प्रैक्टिस बोथ। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मानम्। संसार में रहेंगे नहीं बोला मैंने, मैंने कहा कि आसक्ति दोनों के प्रति आसक्ति साथ साथ में बढ़ नहीं सकती। देखिए गृहस्थ में जाने से क्या हो, जीव कुछ और अलग हो जाता है, आत्मा कुछ अलग हो जाता है, अलग आत्मा आत्मा ही रहता है। ठीक है, ये गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, वो सब भौतिक डेसिग्नेशन है। और अमीर है, गरीब है, ये भी भौतिक डेसिग्नेशन है। हो सकता है बहुत अमीर व्यक्ति है वो अनासक्त हो सकता है, हो सकता है कि गरीब है लेकिन फिर भी अपनी कुटिया से आसक्त हो सकता है। तो ये जो है भक्ति, कोई भी भौतिक अवस्था के ऊपर आधारित नहीं है। डिवोशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वंस मेटीरियल पोजिशन। जैसे मुझे अभी याद हो, मायापुर से भी नवद्वीप स्टेशन में था करने के, ट्रेन पकड़ने के लिए अकेला था बहुत साल पहले, ज्वाइन करने से पहले। तो उधर मुझे टॉयलेट यूज करने के लिए जाना था, तो मैं गया तो उधर कोई था नहीं, अंदर जा रहा था, दूर से कोई चिल्लाए थाक में रुको रुको, तो मैं रुका, जाके मेरे को चिल्लाने लगा, देखते रहे मुझे 25 पैसा देना है। मैंने बोला उधर रखा है 25 पैसा आपके लिए, उधर टेबल के ऊपर रखे, अंदर जा रहा हूं। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, तो अंदर नहीं जा सकते। मैंने बोला तुम था नहीं, मैं क्या करेगा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो मैंने हमें अखंड के इंचार्ज मैं इधर का इंचार्ज हूं, अभी क्या बोलेगा उसको। तो मैंने सोचा पा तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर गरीब है तो अनासक्त है, अमीर है तो आसक्त है। कोई भक्ति जो है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वंस मेटीरियल पोजिशन। न प्राकृतम यह भक्त जनस्य पश्ये, उनके वर्ण और आश्रम के अनुसार या कोई भौतिक स्थिति के परिस्थिति अच्छा या बुरा उसके अनुसार कोई इस जगह से उस जगह से है, वैसा कभी भक्त को देखना नहीं चाहिए। दूसरों को भी देखना चाहिए, खुद को भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी दैट। भले ही कर्तव्य अलग अलग लोगों का अलग अलग, वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन डिवोशनल सर्विस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मेटीरियल पोजिशन। ठीक है, वन हु वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस नो थरोली विथ एनालिटिकल स्टडी। नेक्स्ट, this tree being the reflection of the real tree is an exact replica। ye jo bhautik jagat hai wo aadhyatmik jagat ka ekdam pratibimb hai lekin vikrit pratibimb hai, isliye jo bhi aadhyatmik jagat mein hai wo bhautik jagat mein hai karke dikhai padta hai। the impersonalist take brahman to the root of this material tree and from the root according to sankhya philosophy comes prakriti purusha, then their gunas and the three gunas, then the five grass elements, then the 10 senses mind, in this way they divide up the whole material world into 24 elements। if brahman is the center of all manifestation, then this material world is a manifestation of the center by 180 degrees and other 180 degrees constitute the spiritual world। ये मैथमेटिक्स है, 180 degrees समझते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, क्या हिंदी में पढ़िए उसको।
यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से ये भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है, और गोलार्ध 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है।
हाँ गोलार्ध, ये गोल है अर्ध। आप जो ज्योमेट्री किए होंगे आपने देखा होगा, प्रोट्रैक्टर होगा ना, ऐसा आधा रहता है, डी शेप में रहता है, इसको 180 डिग्री रहता है, बाद में 5, 1, 2 ऐसा डिग्री से ऐसा रहता है। तो ये 180 डिग्री है, ये ऊपर का भाग क्या है आध्यात्मिक जगत है, और ये नीचे का बहुत ही एग्जैक्ट।
हाँ
हाँ, ये तो खाली इंडिकेशन के लिए। वैसे भगवान की जो शक्ति है, सृष्टि है, वो अनंत है, इनफाइनेट है। तो उसमें वन फोर्थ और थ्री फोर्थ क्या है, खाली एक इंडिकेशन मात्र के लिए। एक पाद विभूति, त्रिपाद विभूति, पुरुष सुख में आता है त्रिपाद उद्भेद पुरुष। ये जो एक पाद त्रिपाद, अनंत में एक पाद और त्रिपाद क्या है, इनफाइनेट डिवाइडेड बाय फोर या थ्री फोर्थ, उसमें दोनों अनंत ही है। लेकिन फिर भी ये बताने के लिए, ये भौतिक जगत को देखो, उसका ही अंत आपको पता नहीं लग रहा है। तो आध्यात्मिक जगत देखो कितना बड़ा होगा, इसके तीन गुणा है, खाली इंडिकेशन देने के लिए बस। तो ये जो वैदिक ग्रंथ में इस प्रकार का जो दिया जाता है मैथमेटिक्स, वो थोड़ा सा गड़बड़ वाला मैथमेटिक्स है। जैसे दूसरे अध्याय में आपने सीखा कि आत्मा का साइज क्या है, बाल का, अग्रभाग का, सच में ऐसा है क्या? हाँ है, ऐसा इतना ही साइज है उसका? नहीं नहीं, शास्त्र में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि 10 बाल का, अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा को जिस प्रकार आप माप नहीं सकते हो, उसी प्रकार आत्मा का साइज को भी आप, अगर बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है उसको भी आप मापेंगे तो वो भी साइज जो है भौतिक होगा ना, कुछ तो होगा, एटॉमिक साइज होगा, जो भी होगा साइज, कुछ तो साइज होगा। क्या वो आत्मा का वो साइज है? हाँ, इसलिए ऐसा संख्या का वर्णन किया है, तो ये बताने के लिए कि जिस प्रकार आप माप नहीं सकते इस बात को, उसी प्रकार
इसे भी नहीं माप, कभी कोई साइज नहीं।
अगर एक बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उसको बोलेंगे आत्मा का साइज को माप नहीं सकते हो, चलो नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, सब सो जाएंगे सामने। लेकिन अगर उसको बोला जाए, ये सबके पास बाल है ना, हाँ है, इसका अग्रभाग कितना छोटा है देखो, वो कोई निकाल के देखो, हाँ छोटा है, इसको आधा करो, इसको ऐसे फिर आधा करो, वैसे 100 बार करो, 100 बार करने का जो मिलता है उसको और 100 बार करो, तो नहीं होगा। तो वैसे ही आत्मा का साइज है, तब समझेगा हाँ इतना छोटा है क्या, तो वो तो नहीं माप सकते हम। ये दिस इज अ वेद, वेद इज एक्सप्लेन, हाँ ये एक सिस्टम है एक्सप्लेनेशन का। नहीं तो बाल का अग्रभाग 10,000 हिस्सा आप एटॉमिक साइज है, वो आत्मा का साइज फिर कल फिजिक्स टेक्स्ट बुक में अकॉर्डिंग टू भगवद गीता द साइज ऑफ द सोल इज 10^-3.256×10^-6 mm आ जाएगा अगर टेक्स्ट बुक में वो मेजर करेंगे वो लोग, कि उनके लिए क्या है, बाल का अग्रभाग लेंगे तो उसका साइज मेजर करेंगे तो एटॉमिक साइज कुछ आएगा, उसको 10,000 में डिवाइड करके नंबर लिख देंगे, उनके लिए क्या है, कोई 3.456 ऐसा कुछ डाल के इंटू 10^-10^-20 लिख देने का। वो टेक्स्ट बुक में पास करते हैं, एटम का साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है, प्रोटॉन का साइज क्या है। जब से फिजिक्स टेक्स्ट बुक का ये सब एटॉमिक फिजिक्स आया है, तब से कितनी बार चेंज हुआ मालूम है ये नंबर्स जो लिखते हैं, वो पाई का वैल्यू क्या है, वो कितनी बार चेंज हुआ, ये एटम का साइज कितना है, उस कितनी बार चेंज हुआ, और प्लैंक्स कांस्टेंट कितनी बार चेंज हुआ। तो वैसे ही आत्मा का भी साइज डाल देंगे, वो भी चेंज होता रहेगा।
तो
वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है आपका। वो जो अणु है जिसका वर्णन न्याय दर्शनिक करते हैं, जिनके द्वारा पूरा भौतिक जगत बना है, हर चीज अणुओं से बना है, वो अणु को इधर रखेंगे और जो आजकल फिजिक्स लोगों का अणु को सामने रखेंगे, उसका वो 10 माले की बिल्डिंग के सामने चींटी कैटा खड़ा रहेगा तो ऐसा है। वो अणु जो फिजिक्स में अणु करके बताते हैं ना, वो इतना स्थूल है कि जो न्याय दार्शनिक के जो अणु जिससे पूरा भौतिक जगत बना है, वो अणु वो एकदम इतना छोटा, इतना सूक्ष्म है कि ये आजकल के फिजिक्स लोगों का अणु जो है ये बड़ा बिल्डिंग के मापी समझ लीजिए, सिटी के सामने बिग थिंग। और वो जो अणु है वो थ्री डायमेंशनल नहीं है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, जैसे गणना करते ना उस प्रकार नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, जिसको और विभाजन कर ही नहीं सकते। डेफिनेशन दोनों की एक ही है, अणु मतलब ऐसा तत्व जो जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो डाल्टन ने भी वही बात बताया कि ये भौतिक जगत जो है वो भी अणुओं से बना है जिसका विभाजन और कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में कर दिया इसका विभाजन, बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बोला बाद में बोला न्यूक्लियस है उसके अंदर, बाद में ये बोला। अस्तित्व में ये जो डाल्टन का ये अणु का जो आइडिया कहां से आया, उसको वैदिक ग्रंथों से आया, कहीं और से नहीं आया। बिकॉज ये अणु नामक चीज कहां उल्लेखन किया गया, वेर इज इस एटम, इसका डेफिनेशन कहां है, वेदों में ही है। ब्रह्म संहिता है ना, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, तो सर कई शब्द एटम
नहीं,
जहां जहां नहीं है,
जैसे ब्रह्मा जी की आयु दी गई है या इसका पूरा
नहीं, नहीं, कोई भी चीज जब शास्त्र में वर्णन किया जाता है उधर देखना चाहिए प्रसंग क्या है। कुछ ही श्लोकों में, एक श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अप्रमेयस्य, आत्मा का एक गुण है अनाशिनो अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य के हिसाब से आपको समझना होगा ऐसा है। दैट इज द थिंग, ऑलवेज गेट द स्क्रिप्चर्स लाइक दैट। हाँ क्या कर रहे थे अभी हम लोग,
180
हाँ तो आगे पढ़िए, हिंदी में पढ़िए,
भौतिक जगत उल्टा, क्योंकि ये भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए।
हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आध्यात्मिक जगत में टेबल है, हाँ गोलोक वृंदावन में टेबल है कि नहीं, है ना, इधर है तो उधर होना चाहिए ना,
उधर जो है वो इधर,
फैन है उधर
नहीं,
नहीं फैन नहीं उधर, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, हाँ वही मुझे मालूम था, इधर से
पूछेंगे
न तद भाषेते सूर्यो न शशांको, उसका क्या अनुवाद है, क्या अनुवाद है, क्या अनुवाद है प्रोजी बताइए, ये श्लोक का अंडरस्टैंडिंग है समझिए बराबर, आध्यात्म न तद्भाषेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम ब्रह्म, इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, आध्यात्मिक जगत में बिजली नहीं है, इसका मतलब ये है आध्यात्मिक जगत ऐसा जगह है जहां प्रकाश को प्राप्त करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है और बिजली की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं है, वो है। इधर रात को ही चंद्रमा दिखता है आपको, दिन को ही सूर्य दिखता है, जब सूर्य आता है तभी दिन के कार्य आप कर सकते हो। लेकिन गोलोक वृंदावन में जिस प्रकार की भगवान की लीला है उसके अनुसार चंद्रमा सूर्य प्रकट होते हैं। अगर उस लीला में चंद्रमा का योगदान है तो चंद्रमा आ जाता है, और उस लीला में सूर्य चंद्र की कोई चीज की आवश्यकता नहीं तो कोई नहीं आता। अंडरस्टैंडिंग इसका है। तो जो भी आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में वो आध्यात्मिक जगत होना ही चाहिए, नहीं है होना ही चाहिए। प्रभुपाद क्या लिखते पढ़िए, उस पर सेंटेंस पढ़िए।
क्योंकि भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है तथा आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए।
इसी प्रकार का विविधता
विविधता होनी चाहिए।
हाँ, तो उधर तारे नहीं है आध्यात्मिक जगत में, होना चाहिए,
होना चाहिए।
हाँ
हाँ,
बटन दिया रिटी, लेकिन होना चाहिए ना। वही तो बताए ना अभी,
वो जो आपने उस दिन बताया था दिया लगाते समय बोलना चाहिए, उसको भी बताया, बताया आपने सूर्य और चंद्र वहां पर है, कोई मेरे दिमाग में बैठ गया, आप बोल रहे सूर्य चंद्र।
हाँ, वो फिर भी अंडरस्टैंडिंग है कि सूर्य और चंद्रमा नहीं है करके, ये अंडरस्टैंडिंग ये है। आध्यात्मिक जगत जैसे भौतिक जगत है, सूर्य की क्या आवश्यकता है बताइए, क्यों उनके बिना आपको आध्यात्मिक जगत में रोशनी प्रकाशित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है।
आध्यात्मिक जगत सब प्रकाशित है,
हाँ, तमस, इस भौतिक जगत को तमस कहा गया है। ये जो आध्यात्मिक जगत का ये जो उसका प्रकाश है, उसका रिफ्लेक्शन है। जैसे मान लो कोई कोई भी वस्तु है, उसका शैडो गिरता है, उसका परछाई है। ये भौतिक जगत जो है एक परछाई के बराबर है। रिफ्लेक्शन जब होता है तो प्रकाश वो है किस रूप में है, विकृत रूप में है। ये जो प्रकाश आपको दिखाई पड़ रहा है ये अस्तित्व में विकृत प्रकाश, इसलिए सूर्य के चंद्रमा की सबकी आवश्यकता है। प्रभुपाद लिखते कि परवर्टेड रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं कि जो प्रकाश नहीं है लेकिन है, किस रूप में है, विकृत रूप में है। हाँ हाँ,
हाँ
इसलिए कहा कि भगवान की लीला में अगर उसकी आवश्यकता है तो अपने आप आता है, और उसकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं रहता। वहां जरूरत कोई चीज का नहीं है, जहां दोनों के बीच में अंतर यही है। जैसे ये हर चीज क्या है, फोर्स्ड है, जबरदस्ती है। अभी आप चाहो ना चाहो सूर्य का अस्त हो जाएगा, 6 बजे 7 बजे हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए सूर्य, ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में लीला के अनुसार प्रकृति कार्य करता है। प्रकृति मतलब भगवान का वो जो भी जितने भी अवयव है, जो इस कार्य और ये सूर्य का कांति कहां से मिल रहा है, ब्राह्मण से जरूरत है, जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते उधर है नहीं, वी कैन नॉट से एवरीथिंग इज हाँ। ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भक्तिनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में उसका जवाब देते हैं। डेमन से वृंदावन, वृंदावन में भी असुर आए थे कि नहीं, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में कोई असुर नहीं आता। ये गोकुल वृंदावन है। आध्यात्मिक जगत में क्या है, गोलोक वृंदावन। भगवान कुछ इस भौतिक जगत में कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। भगवान की प्राकृति के पीछे अंतरंगिक कारण है, कृष्ण का प्राकृतिक अंतरंगिक कारण है। आध्यात्मिक जगत में राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ नहीं रहता है और अन्य गोपियों का विवाह, वो एक लीला है। दूसरा है असुरों का आना, पूतना का वध करना, अष्टासुर का वध करना, ये असुर का वध करना, शकटासुर का वध करना, ये सब चीजें आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। लेकिन जब कोई असुर का वध किया जाता है, करते हैं भगवान, तो उस समय यशोदा माई के हृदय से वात्सल्य बहुत प्रकट होता है। जैसे पुतना का वध किया तो तुरंत भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए वो लोग भागम भाग किए, उनको भगवान का रक्षा करो, ये जो भाव है क्या उसका अनुभव वो लोग नहीं कर पा रहे? करते हैं। कैसे करते हैं? उनको सपने में हो जाता है, ऐसा भक्ति में ठाकुर के लिखा है चैतन्य शिक्षा में। इट हैपन्स इन द ड्रीम्स, सपने मतलब जैसे मान लो कि आपको स्वप्न, हमको स्वप्न आता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो एक्सीडेंट हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैठ के जो एक्सीडेंट होने के बाद जो इमोशंस का अनुभूति होता है, वो इमोशंस का होता है, लेकिन हाथ पैर कुछ बराबर सलामत रहते। वैसे ही जो प्रेम के जो लक्षण है यशोदा माई के अंदर, वो लक्षण या उसका अनुभव, यानी पूतना वध के बाद जो जो वात्सल्य का अनुभव, वात्सल्य रस का अनुभव किए कृष्ण और यशोदा, वो अनुभूति यशोदा माई को होती होता, यशोदा माई को होता उधर आध्यात्मिक जगत में, लेकिन पूतना आना मारना वो रियलिटी में नहीं होता है। हाँ, ये ऐसा उनका लिखता है, लेकिन ये कैसे है क्या है उसके ऊपर विचार मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो है एज इट इज कोट किया है, बस कोटेड एज इट इज, दैट्स ऑल। एक कोर्स है जिसका नाम है डेमन्स इन वृंदावन, वो बुक में आपको ये चीज प्राप्त होता है, यू कैन सी इन दैट बुक। अरे आध्यात्मिक जीवन तो उससे ज्यादा है। एक ही तो उधर तो अनेकों लोकों में भगवान अपने विस्तारों में अनेकों व्यूहों के रूप में रहते निवास करते हैं। आध्यात्मिक जगत जितने क्या, एक ही जो छोटा सा एक जगह है क्या, कोई एक एक गांव है क्या, यूज हाँ यशोदा माई का अभी यही तो है। भगवान का जो लीला है वो नित्य लीला है, वो नित्य रूप में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में भगवान की लीला चलती रहती है, बोथ इन द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। वो चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महापुरुष इसका उदाहरण देते हैं, वो दिवाली के टाइम में गांव में वो एक घुमाते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा गोल सा बनाते हैं और रस्सी लगा के पूरा घुमाते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ पंछी कोड़ा है कि नहीं, हाँ हाँ क्या बोलते हैं उसको, जलाद चक्र, अलाद, हाँ अलाद, अलाद चक्र, अलाद चक्र। हाँ तो यही दिवाली है गांव में, पटाखे वगैरह खरीदने का पैसा नहीं रहते, यही दिवाली है। वो इतना बहुत देर तक जलता है, वो बहुत सुंदर दिखता है, हाँ उसके अंदर गाय का गोबर है और क्या क्या है, वो सब भूसा है, वो सब लगा के, हाँ 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 तार लगा बड़ा, हाँ हाँ अनाज चक्र। तो वैसे ही भगवान की लीला है, इसका उदाहरण देते हैं चैतन्य चरित भगवान।
हाँ तो वो लोग जब बोलते हैं स्पीच में और
एक मैगजीन निकला था बहुत साल पहले, उसका नाम लिखा था, एक मैगजीन, एक ही मैगजीन निकला, उसका नाम है ऑरिजिन्स। आपने कभी पढ़ा, सुनने देखा है कभी? हम लोगों को मालूम होना चाहिए, शुड नो दिस पेज, मैगजीन कॉल्ड ऑरिजिन्स। उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स, एक चैप्टर है द हायर डायमेंशनल साइंस। ये शास्त्रों में इन सब चीजों को समझना है तो हमको दो चीजों के बारे में बहुत ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, कि टाइम स्पेस, टाइम साइंस, टाइम साइंस मतलब काल का विज्ञान, और स्पेस का विज्ञान, स्पेस, ठीक है। जैसे काल का विज्ञान मतलब क्या है, लोगों के अनुसार काल कितना पहले तक है, आधुनिक जगत को मालूम ही नहीं है क्या ये टाइम, उसके बारे में अच्छा दस कल्प है, कल्प भेद क्या होता है, और युग अंतर, ये सब चीजें स्पष्ट रूप में हमको मालूम होगा तभी इन सब बातों को समझ सकते हैं। दूसरा स्पेस, जैसे स्पेस, एक चींटी इस बुक के ऊपर घूम रही है, मैं उसको उठाऊंगा, उठा के इधर रखूंगा, वो चींटी को पता लगा कि वो कहां कहां जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो चींटी जो है उसका भी लेंथ ब्रेथ हाइट रहता है, लेकिन समझ लीजिए उसका प्लेन में लेंथ और ब्रेथ ही है, उसका हाइट नहीं है, टू डायमेंशनल प्लेन, क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल प्लेन। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, 2D, बाद में आपने कभी देखा होगा 3D पिक्चर, 3D आया था, पहले आया था, चेस्ट ऑफ पेन की देखना पड़ेगा, उसके अंतर क्या है, 2D में 3D में अंतर क्या है, नहीं नहीं, चेस्ट ऑफ पेन लेकर कैसे दिखता था वो, हाँ है कि नहीं, यानी उसके अंदर डेप्थ भी था, इसके अंदर डेप्थ नहीं है, उसके अंदर क्या था, वो डेप्थ भी था, थ्री डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको 3D बोला जाता है, खाली लेंथ और ब्रेथ कागज के जैसा अगर है तो 2D है, अगर हाइट भी है तो 3D हुआ, वैसे 4D है, क्या जब 2D है 3D है 4D नहीं हो सकता, वैसा है भौतिक जगत जो है 64D तक है, वो ब्रह्मा जी है, हाँ तो इसीलिए तो इसको डायमेंशनल डिफरेंस जब तक मालूम नहीं रहता, भाई देवता लोग ऐसा कैसे, इधर कैसे जाओगा, और ये सृष्टि में कैसा कैसे हो रहा है, अभी ऐसा कैसे चांद जो है वो सूर्य से दूर कैसे है, हाँ जब 4D बंद नहीं घुस रहा है तो अंततः उसका जवाब ये है, ये सब जो है ना हायर डायमेंशनल प्लेन्स है, ये जब इसका और एक उदाहरण है, आपको मालूम है जब 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 ये महाभारत युद्ध क्यों हुआ था, द्रौपदी ने हंसी थी दुर्योधन के ऊपर, दुर्योधन क्या था, कर्ण नहीं, दुर्योधन, दुर्योधन ना, दुर्योधन था ना, दुर्योधन,
हाँ
क्या है उधर, हाँ उसके बाद जब वो सीढ़ी चढ़ने के लिए गया, चढ़ रहा था, चढ़ रहा था, लेकिन चढ़ पा रहा था क्यों, हाँ कौन बनाया था उसको, यक्षो ने बनाया था, यक्ष लोग का जो डायमेंशन है 2.5 डायमेंशन है, दे लिव इन 2.5 डायमेंशन। महाभारत तात्पर्य, महाभारत तात्पर्य टीका श्रीपाद मध्वाचार्य का, वो इस इंफॉर्मेशन को देते हैं, ही गिव्स दिस इंफॉर्मेशन कि यक्षस दे कंस्ट्रक्टेड, वो जो जो है उसको 2.5 डायमेंशन में कंस्ट्रक्ट किया, वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना नहीं होता, चलना होता है, आप चलोगे तो चढ़ोगे, चढ़ोगे तो चढ़ते रहोगे। हाँ ये कॉम्प्लिकेट। तो देखिए भगवान ने सृष्टि ऐसे ही नहीं बनाया है, आपने दो ईटा लगा के ऐसा एक पत्रा बना दिया तो हो गया, ऐसा थोड़ी ना बनाया। इसके पीछे कितना गहरा फिजिक्स है सोच लीजिए, कितना बड़ा विज्ञान है, कितने बड़े वैज्ञानिक है। इज नॉट जस्ट इन ऑर्डिनरी वर्ल्ड, सब है। ये जो है ना अभी हमके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, अनपढ़ व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं है समझना। यानी हम पढ़ाई करके ये सब जितना सरल है उसको मुश्किल बना दिए। ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, जब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब कतल काना है, ही मीन्स इट, ये सब चीजों को समझने का जो बुद्धि है उसको नाश किया जाता, उसको कतल किया जाता है, कतल स्कूल कॉलेज में। अभी पानी है, जो अनपढ़ है वो प्रणाम करके पीता है, वरुण देव है। लेकिन अभी आप कॉलेज में जाइए तो क्या सिखाएंगे, ये क्या है? पानी है, H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, H2O है। H2O क्या है? H2O अगर कोई दुनिया के लिए कोई हित कर सकता है, आप एक फैक्ट्री खोली जिसके अंदर इतना बम बनाई है, सब स्कूल और कॉलेज के ऊपर बम डाल दीजिए, उसको नाश कर दीजिए, खत्म कर दो, सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक जला दो, तब लोगों का बुद्धि जो है इसमें इसको समझ नहीं लग सकता कि कितना विपरीत, इतना अज्ञान भरा हुआ है। तो ज्ञान सुनाएंगे तो ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं, नाना प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वैदिक साइंस हाँ है, क्यों नहीं है? हाँ है, क्यों नहीं, वाई नीट स्टॉल देयर। डायमेंशनल साइंस तो सबसे पहला यही पार्ट होता है। आप सब 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 अभी भी है, लेकिन उसको प्रयोग में लाने के लिए इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण चाहिए। वो मंत्र है जिसके द्वारा आप एक पत्थर को 2 किलोमीटर ऊपर आप रख सकते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेस, मैंने वो पढ़ा है, वो जो वो वेद का वो पार्ट है वो पढ़ा है। मान लीजिए इधर एक पत्थर है, 10 टन का पत्थर है, उधर आप दक्षिण भारत में एक मंदिर है, आप तंजौर गए, तंजौर श्रीरंगम के पास में है, श्रीरंगम से बस 2-3 घंटे की दूर में बृहदीश्वरा टेम्पल, तंजौर में बड़ा मंदिर है बृहदीश्वरा टेम्पल, शिवलिंग है। तो इतना ऊंचा, इतना बड़ा उसका शिखर है, वो शिखर का जो ऊपर पूरा ऊपर का जो भाग है शिखर का मोस्ट, उस पत्थर का वेट है 25 टन, 25 टन है। और उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है, वो पत्थर का परछाई जमीन के ऊपर कभी नहीं गिरता, जमीन वैसा बना, कैसे हो सकता है ऐसा बना है, स्ट्रक्चर ऐसा बना है। तब ब्रिटिश के लोग आए और उधर उन्होंने लिखा कि वो लोगों ने मंदिर कैसे बनाया होगा, 25 टन वाला पत्थर ऊपर कैसे लेके गए होंगे। उन्होंने कहा कि करीबन 50 किलोमीटर दूर से वो लोगों ने एक ब्रिज बनाया, उधर से ऐसा पत्थर मिले, लेकिन ऐसा नहीं किया वो लोगों ने। कुछ ब्राह्मण है जो स्थापित वेद को अच्छी तरह जानते हैं, जिनका एकदम सेंस कंट्रोल इतना है, वो उपासना करके क्या करेंगे, उधर का जो स्पेस है वो स्पेस ऐसे मंत्र शक्ति के द्वारा वो इधर रखेंगे, इधर का स्पेस को उधर रखेंगे तो पत्थर उधर चले जाएगा। तो पत्थर कहां है, स्पेस के अंदर है ना, तो ये मंत्र शक्ति के द्वारा ये सब हो सकता था। उधर जाने के बाद वो पत्थर को कोई ऐसा लोहे के साथ है ऐसा करके जोड़ा नहीं है, वो शब्द के द्वारा लॉकिंग हो जाता है उसका, यानी उसका विपरीत मंत्र जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो लॉकिंग खुलेगा ही नहीं। हाँ, आप कितना भी बम्ब डालो उसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। तो ये है डायमेंशनल स्पेस, डायमेंशनल नॉलेज।
वेदों से ये मिलने
ये इसलिए बता रहा हूं सब चीजें ये पता करने के लिए कि ये वैदिक साइंस है, ये एब्सोल्यूट साइंस है, ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। एक व्यक्ति ने एक का नाम स्क्रॉडिंगर, आपने सुना है कोई फिजिक्स पढ़े होगा उस पर, स्क्रॉडिंगर वेव थ्योरी। इसके अनुसार उन्होंने एक लेख लिखा, आप आइस आइस बर्फ है, बर्फ की जलाओ कहते हैं क्या होगा, बर्फ को आग लगाओ, आग से उस क्या होगा तो पानी बनेगा, सॉलिड लिक्विड बनता है, उसको और जलाओ तो क्या होगा, गैस बनता है, लेकिन उसको और जलाओ तो क्या बनेगा, गैस को पूरा और हीट करते जाओ क्या बनेगा, बम क्या है, बम कोई भी चीज को जब आप गर्म करते जाएंगे अंत में क्या होगा, वो ब्लास्ट होगा ना, ब्लास्ट होगा मतलब क्या है, वेव्स बनेंगे, वेव्स समझते हैं, वेव्स के क्या बोलेंगे, अंततः ये तरंगों को कंप्रेस किया जाए तो वो गैस बनता है, उसको और दबाया जाए तो लिक्विड बनता है, उसको और दबाया जाए क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तो उसने इतना तक अपनी बुद्धि के द्वारा इतना तक उन्होंने कहा एवरी मैटर जितना भी दिखाई पड़ रहा है हर एक चीज अंततः मूल रूप में क्या है, सब तरंग है। तो उसके ऊपर एक फिजिक्स प्रोफेसर जो वेद विद्वान है, वेदों को सत्य करके स्थापना करने के लिए उन्हें कहा कि श्रोडिंगर का जो पेपर है, रिसर्च पेपर है, उसके ऊपर और एक पेपर लिखा उन्होंने, लिख के कहा अगर हर चीज मूल रूप में तरंग है तो वेदों में जब मंत्रों को उच्चारण करने के द्वारा बंदर मनुष्य को बंदर को चूहा बना सकते थे शाप के द्वारा, है कि नहीं, ये मंत्र शक्ति क्या है, तरंग है। हर वस्तु मूल रूप में क्या है, तरंग। दो तरंगों का मिलन होता है तो तरंग का जो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, तो वो तरंग का जो चेंज हो गया तो दूसरा वस्तु बन गया कि नहीं, यानी ये विज्ञान को यूज करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, सेंस कंट्रोल। मंत्रों का शक्ति तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, कोई भी अस्त्र हो जब तक उनका पूर्ण तरीके से वो कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी नहीं होता है तब तक वो भले ही उच्चारण करता वो जाता नहीं, हो डजंट गो, द कैपेसिटी इज अ मंत्र रोजगार। वो अग्नि को जलाने के लिए मंत्र उच्चारण करेंगे फिर माचिस जलाएंगे, क्यों, उसके पास कोई है ही नहीं वो शक्ति, ठीक है, हो गया। वो 15वां अध्याय का पहला श्लोक, अब उसको कैसे बनाया वो लोगों ने, ऐसे नहीं लिखा, उसको बनाने के लिए कितना लोग लगे और कितना मैकेनिकल चीज से लगा, वो लोग मंत्र शक्ति से नहीं बनाया उसको, वो मैकेनिकल मीन से बनाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और ब्रिज में
तो
हाँ फिजिक्स पढ़ने आए, अच्छा प्रेस टेन को 15वां अध्याय पढ़िए, भी खोलिए अच्छा है बोला आपने, लेकिन आधुनिक दुनिया में गुरुजी कभी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है ताकि उनको यही बताने के लिए कि आप जो अपने आप को होशियार समझते हो चुप रहो, इसके लिए आगे लास्ट खत्म कीजिएगा।
परमेश्वर की निरंकार शक्ति है, पुरुष साक्षात परमेश्वर है, इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि ये अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वो दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु ये स्रोत जहां से ये प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वो इस जगत के की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वो इस विद को जानता है तो समझिए कि वो वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वो इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है, वो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया और वो है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को पाकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना।
तो ये वेदों को जानना मतलब क्या है? वेदों को जानना मतलब ये है कि ये वृक्ष को काटना, यानी भौतिक आसक्ति को काटना, केवल वेदों के जो कर्मकांड के चीजों को पालन करते हुए एक वृक्ष से एक शाखा से दूसरी शाखा में जाना, स्वर्ग जाना, कभी नीचे आना, कभी ऊपर जाना, ये वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला श्लोक।
शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रमाणा
अधश्चोर्धम प्रसुतास्तस्य शाखा। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे उनकी शाखा है, वो नीचे की ओर आने के बाद फिर वापस ऊपर जा रहे हैं। आपने अश्वत्थ वृक्ष को देखा होगा, वो बड़ा विशाल रूप में विस्तार होता है। एक मूल शाखा होता है, उससे अश्वत्थ वृक्ष के एक शाखा नहीं, उसको मूल क्या बोलेंगे, उसको ट्रंक को तना मतलब शाखा ना, जो मेल है पेलर, हाँ उसको क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। ठीक है, वो तना रहता है, उसके ऊपर से ब्रांच उत्पन्न होते शाखा, वो शाखा से फिर वापस नीचे हुई और नीचे वो फिर वापस वो तना के रूप में कार्य करता है, सबसे लिख तरह बाद में वापस ऊपर। तो जब नीचे आता है तो गुण प्रवृद्धा, जैसे वृक्ष के लिए पानी की आवश्यकता है, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है भौतिक जगत है उसका वृद्धि कैसे होता है? गुणों से। तीनों गुण जो है ये पानी का रूप कार्य करता है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, विषय सेंस ऑब्जेक्ट्स, प्रवाला मतलब ट्विग, ट्विग समझते हैं, ट्विक्स क्या बोलेंगे उसको, ट्विक्स को क्या हिंदी में कैसे अनुवाद किया, तिनका, एकदम आगे की ओर ऐसा आके एकदम सॉफ्ट रहता है वो, कोपल कोपले, हाँ पत्ती का पहला होता है इसको ट्विक्स बोले, वो विषय इंद्रिय विषय वस्तु है, विषय प्रवाला। तो अदस्य मूलान अनुसंधितानी कर्माणि बंधिन मनुष्य लोक है, इस प्रकार विषयों को भोगते हुए ये कर्म के प्रति उनका बंधन हो जाता है। इसका अनुवाद पढ़िए।
इस वृक्ष की शाखाएं स्वर्ग का नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है, इसकी रहनिया इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी हुई है।
वेरी गुड, तात्पर्य।
अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है, इसकी शाखाएं चतुर्विधिक फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य पशु घोड़े गाय कुत्ते बिन्या आदि, ये सभी वृक्ष की शाखाएं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं तथा देव गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहराता है। इसी प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक होता है वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं, विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं तथा कान नाक आंख आदि जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियां शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक गण राग तथा द्वेष हैं जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौर जलों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जल तो ब्रह्मलोक में है किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पूर्ण कर्मों का फल भोग चुका है तो वो इस धरा पर उतरता है और मनुष्य के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। ये मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है।
ये बात ध्यान में रखिए, ये जो कर्मों का संचय इधर ही होता है मनुष्य जीवन में, वो भी जो ये लोक है भूलोक, भूलोक में ही होता है। अन्य योनियों में कर्म जो मनुष्य योनि में किया गया कर्म को ही भोगा जाता है। मान लीजिए कोई कुत्ता, तो वो कुत्ता का सुख दुख किसके ऊपर आधारित है? जब वो कुत्ता मनुष्य योनि में था वो टाइम में जो अच्छा बुरा किया उसके अनुसार उसको सुख दुख। कभी कभी देखते हैं कुत्ता एक मर्सिडीज भी घूमता है और कुत्ता रास्ते के ऊपर ऐसे बेचारा उसका कोई गाड़ी गया उसका पैर टूट गया ऐसा कुछ हुआ, क्यों? कुत्ते क्यों होने में दोनों में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य किया, उसके लिए कर्म लागू नहीं होता है कि ये करना है वो करना है ऐसा अच्छा बुरा ऐसा लागू नहीं होता है। और वो भी मनुष्य जीवन में वो भी ये पृथ्वी में ही, जब स्वर्ग में भी जाया जाता है उधर केवल कर्मों को ही भोगा जाता है, उधर कोई अच्छा कर्म बुरा कर्म करना ऐसा कुछ नहीं होता है। इज नथिंग लाइक दैट। यानी जितने भी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इधर का ही है, इट इज फॉर दिस प्लेस ओनली। तो ये कर्म का बंधन क्यों होता है? क्योंकि ये जो विषय वस्तुओं के प्रति हमारा संपर्क होता है, इंद्रियां इंद्रिय विषय वस्तुओं के साथ संस्पर्श की वजह से ये सुख और दुख को अनुभव करते हुए उस समय कुछ और प्रकार के कर्म करते ही बड़ा सा वृक्ष को बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, ये कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो अगले श्लोकों में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि ये वृक्ष को तोड़ना चाहिए काटना चाहिए। अभी तक ओनली मनुष्य ने ये जो अभी मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ अभी इस लोक में वही और कर्म योनि कुछ
और सारी भोग योनि
सब भोग, अच्छा या बुरा जो भी किया मनुष्य जन्म में वही। नहीं नहीं, देवताओं का जैसे देवता भी अनेकों प्रकार के हैं, जैसे देवता के लोक में निवास करने वाले सिटीजन्स है वो अलग है, यह स्वर्ग है। स्वर्ग में कंट्रोलिंग देवता लोग हैं, नियंत्रण करने वाले देवता। स्वर्ग में निवास करने वाले जो लोग हैं स्वर्ग के निवासी है, और स्वर्ग में पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग में गए हुए कुछ लोग हैं, ठीक है, पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जो गए जीव वो एक प्रकार समझ लीजिए कि विजिटर्स वीसा अमेरिका को मिलता है, विजिटर्स वीसा, विजिट करके आ जाना, जैसे टाइम खत्म हो गया क्षीण पुण्य। लेकिन कुछ अमेरिका में रहने वाले हैं कुछ, वो कौन है? उधर के निवासी, यानी उस लोक में निवास करने के लिए एक प्रकार की चेतना की आवश्यकता है, जिनका चेतना उच्च उच्च स्तर में पहुंच गया वो लोग रहेंगे, और जैसे उनकी अवधि समाप्त हो जाता है तो वो नीचे आ जाएंगे चेतना के अनुसार। निवासी भी जैसे उनका अवधि हो जाता है, निवासी भी उनका भी समाप्त होने का खत्म, लेकिन वो लंबा समय है उनके लिए, वो तो हमारे जैसा या कोई और जो जो वीसा लेके गया वैसा नहीं। जैसे उनको उम्र समाप्त हो गया वो मर जाता है कि नहीं अमेरिका, ऐसे और प्रलय है स्वर्ग का प्रलय मान लीजिए, या उधर के जो कंट्रोलिंग देवता है एक छोट एक मिस्टेक किया समझ लो उसका पोस्ट निकल जाता है। कर्मों का नियम नहीं, वो ये कर्म नहीं बोला जा सकता उसका, वो अपना ड्यूटी नहीं किया तो उस पोस्ट के लिए फिट नहीं करके नीचे छोड़ देंगे। एनी डेमीगॉड्स, वो अपना एक भी गलत गलत करते हैं पोस्ट निकल गया तो खत्म हो गया। ठीक है, एनी हो तो नेक्स्ट ये पांच श्लोक रखा था पंद्रह अध्याय का। हाँ बोली। जैसे मान लो कि कोई अभी मनुष्य योनि में था, उसका ऐसा नीच कर्म थे कुत्ते की योनि में क्या है, ठीक है, फिर उनका स्टेप बाय स्टेप मृत्यु के साथ अपने आप उनका प्रगति होता है, समझ रहे हैं पॉइंट। अंत में मनुष्य योनि में आए, इसलिए मनुष्य योनि को इसमें श्रेष्ठ माना गया है। एक बार वो प्राप्त होने के बाद फिर छूट गया, पता नहीं कब वापस मिलने वाला है। नहीं 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 नहीं, प्रगति जो है बाय डेथ ऑटोमेटिक प्रोग्रेस,
इसके मतलब कि मनुष्य योनि में कोई कर्म किया
वो सुख दुख उस योनि में जो सुख और दुख भोगता है वो मनुष्य योनि में जो किया उसके हिसाब से, लेकिन ये जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स मनुष्य योनि, मनुष्य योनि की ओर आने का जो प्रोग्रेस है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस बाय डेथ। जैसे कुत्ता मरा तो तुरंत ऊपर क्यों नहीं में, वो ही ऊपर क्यों नहीं मर गया तो तुरंत ऊपर क्यों नहीं में, ऐसे 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 धीरे धीरे
उसको सारी योनियां।
हाँ सारे योनियां जब हाँ ठीक है शुक्र दिए, ये पता नहीं आपने प्रसाद खिला दिया तो पता नहीं क्या होता। जैसे आज सुबह क्लास में सुन रहे थे क्रिस्टान प्रो क्लास में, सीआर सीआर था लोमड़ी था, वो बेचारे बच्चे लोगों से परेशान होकर गुफा बना के रहता था राधा कुंड के पास में, और बच्चे लोगों ने इसको देखा और आजू बाजू में आग जला दिया। सीआर को मालूम तब ने अभी राधा कुंड है, बहुत तीव्रता से राधा रानी से प्रार्थना किया बचाव करके, तो उनको सखी का रूप मिला। देखो लोमड़ी पिछले जन्म में क्या था वो तो वही जाने, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जन्म इधर ऐसा है, इन जानवरों का जन्म होता है ये व्रज में या स्थान में, वो साधारण जीव नहीं है। चीटी का भी जन्म होता है इधर, ये साधारण जीव नहीं है, इट्स ट्रू इट्स ए फैक्ट। ठीक है, वो घूमने लगा रहा, भगवान ने सोचा ये आरती है और वैकुंठ पहुंच गए। ये सब क्या है, सत्य है, इज ट्रूथ। न रूपमस्ये ततोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं जुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चयं गरीगितव्यं यस्ता भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये पुराणी। हो नरूपमस्येह, ऐसा जो वृक्ष का भी वर्णन किए दो श्लोकों में, ततोपलभ्यते नहीं मिलता नहीं है, दिखता नहीं है, और ये वृक्ष का ना अंत हो ना आदि, ये कब शुरू हुआ कब अंत होगा उसका कोई पता नहीं कर सकता है। और निश्चित रूप में एक बात है, अश्वत्थ में ये भौतिक जगत जो है उनके प्रति आसक्ति है, सुविरूढ़ मूलम उनका मूल जो है ऐसा गढ़ा हुआ है कि उसको काटना है तो आपको एक शस्त्र की आवश्यकता है। कौन सा है वो शस्त्र, असंग नामक शस्त्र चाहिए, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वाई, दृढ़ता से घिरा हुआ जो वृक्ष है उसको क्या करो, उसको असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जब इस काट दोगे तो क्या होगा, ततः परम तत्परिमार्गितव्यम, भगवान के जो परम धाम है उसका मार्ग को चुन लोगे, उधर चले जाओगे, अगर उधर जाओगे यस्मिन गत्वा न निवर्तन्ति भूयः, फिर वापस आने की संभावना नहीं है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तो मैं ऐसे जो पुरुष आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं, शरणागत होता हूं। यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, यत प्रवृत्ति जिनसे ये सारा चीज उत्पन्न हुआ है। तो भगवान का शरण लेने की विधि पांचवां श्लोक में वर्णन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सरेंडर इज डिस्क्राइब्ड इन द फिफ्थ वर्स, पंद्रह अध्याय का पांचवां श्लोक जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहला लाइन में द सरेंडर प्रोसेस डिस्क्राइब्ड वेरी नाइसली हियर। तो ये वृक्ष को काटने के लिए असंग को प्राप्त करना होगा। तो सार रूप में यही है कि ये भौतिक जगत के बारे में जानना, भौतिक जगत को जानना, ये दोनों में अंतर है। भौतिकवादी क्या जाता है, ये भौतिक जगत में कैसे भोगूं उसके बारे में बहुत ज्ञान रहता है, और आध्यात्मिकवादी को भौतिक जगत के बारे में ज्ञान रहता है कि ये दुखाल रसाश्वत है। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषारण दर्शन, ये ज्ञान का सबसे पहला अंग है कि ये जानना कि ये भौतिक जगत निवास करने के लिए योग्य जगत, योग्य जगह नहीं है, तभी तो काटने के लिए प्रयास करेगा। बक्सियांस ठाकुर इतना हद तक कहते हैं कि दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन टू स्टे, एक सभ्य व्यक्ति को निवास करने योग्य स्थान नहीं है। प्रभुपाद जी के 80% प्रवचन केवल इसके ऊपर है, कोई प्रवचन हो उसके अंदर 80% इसी के ऊपर रहेगा कि दिस इज नॉट ए फिट वर्ड फॉर यू टू स्टे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष मुख्य दोष, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये मृत्यु ये दोष है जब देखते हैं, ये हमारे लिए प्रेरक प्रेरणा का प्रेरणा है इस जगत को छोड़ने का, इसके बार बार ये बात कहा जाए। निर्माण मोहा ऋच संग दोषा वो कल करेंगे मिलजुल टुमारो। निर्माण मोहा कल आखिरी क्लास है, कल सुबह हो गया सात कल 7 तारीख ना।
हरे कृष्णा कृष्णा है
उसका अभी
मिलेगा।
अच्छा वेरी गुड, कौन कौन दे रहा है एग्जाम रिजल्ट? फर्स्ट एग्जाम कब दिए थे, कब दिए थे? बहुत पहले। कितने अध्याय का था?
6 अध्याय
का, और प्रशांत माजी ने करेक्शन करके भेज दिया।